असर दिखाएगी। आहे रसा कभी न कभी कबूल हो के रहेगी, दुआ कभी न कभी। जो गुम हुए तो क्या वो सदा रहेंगे गुम, ढूंढे से मिलेगा पता उनका कभी न कभी। कभी तो छटेगा फिजा से अंधेरा, कभी तो छटेगा फिजा से अंधेरा, कभी तो मधु चांदनी रात होगी, कभी तो चलेगा फिजा से अंधेरा, कभी तो मधु चांदनी रात होगी, कभी तो छटेगा फिजा से अंधेरा। कभी तो छटेगा फिजा से अंधेरा, कभी तो मधु चांदनी रात होगी, कभी तो छटेगा फिजा से अंधेरा, कभी तो मधु चांदनी रात होगी। कभी तो जलेंगे चरागे मोहब्बत, कभी तो जलेंगे चरागे मोहब्बत, किसी दिन तो उनसे मुलाकात होगी, कभी तो जलेंगे चरागे मोहब्बत, किसी दिन तो उनसे मुलाकात होगी, कभी तो जलेंगे। अगर दफ्तन वो हमें याद आए, शबे गम की खामोश तन्हाइयों में, अगर दफ्तन वो हमें याद आए, शबे गम की खामोश तन्हाइयों में, जो बिखरेंगे जुल्फें तो छाएंगे बादल, जो बिखरेंगे जुल्फें तो छाएंगे बादल, जो टपकेंगे आंसू तो बरसात होगी, जो बिखरेंगे जुल्फें तो छाएंगे बादल, जो टपकेंगे आंसू तो बरसात होगी, जो बिखरेंगे जुल्फें तो। अगर दफ्तन वो हमें याद आए, एक कल्पना कीजिए कि कोई एक प्रेमिका अकेले में गम की रात में बैठी हुई होती है और अपने प्रीतम के इंतज़ार में बैठी हुई होती है, दिल गम से भरा हुआ है और अचानक से उसको अपने प्रियतम की याद आती है, वो बहुत चाहती कि वो प्रीतम मेरा मुझे मिलने के लिए आए, लेकिन वो प्रीतम आता नहीं है, तब उसकी हालत क्या होती है, वो हालत इस काव्य में लिखी है। अगर दफातन दफा ऐसा नहीं, अचानक अगर मेरे प्रीतम की याद मुझे अचानक से आती है, शबे गम की खामोश तन्हाइयों में, शबे गम यानी गम की रात, गम की रात में, गम की रात की खामोश तन्हाई में, अकेलेपन में यकायक मुझे अपने प्रियतम की याद जब आती है तो होता है क्या, जो बिखरेंगे जुल्फे तो छाएंगे बादल। ये एक एक अवस्था उसकी ऐसी होती है कि वो बिल्कुल इतनी बेचैन सी हो जाती तो उसके सारे जुल्फे जो है उसके चेहरे पर आती है जैसे कि बादल छाए हुए हो। आसमान में जब बादल आ जाते हैं तो चाँद छुप जाता है, वैसे उसका चाँद का मुखड़ा वो बालों के पीछे छुप जाता है, जैसे कि बादल घिरे हो और उसके आँखों में से जब पानी बरसता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में से पानी गिर रहा है, ऐसी उसकी हालत बन जाती है।
अगर दफ्तन वो हमें याद आए शबे गम की खामोश तन्हाइयों में,
जो बिखरेंगे जुल्फे तो छाएंगे बादल, जो टपकेंगे आंसू तो बरसात होगी, जो बिखरेंगे जुल्फे तो छाएंगे बादल, जो टपकेंगे आंसू तो बरसात होगी। जुदाई के लम्हे करीब आ रहे हैं, सितारों के दिल डूबते जा रहे हैं, जुदाई के लम्हे करीब आ रहे हैं, सितारों के दिल डूबते जा रहे हैं, जुदाई के लम्हे करीब आ रहे सितारों के दिल डूबते जा रहे हैं, सितारों के दिल डूबते जा रहे हैं, जुदाई के लम्हे करीब आ रहे सितारों के दिल डूबते जा रहे हैं, जुदाई के लम्हे करीब आ रहे सितारों के दिल डूबते जा रहे हैं। इधर आओ तुमको गले से लगा लूं, इधर आओ तुमको गले से लगा लूं, खुदा जाने फिर कब मुलाकात होगी, इधर आओ तुमको गले से लगा लूं, खुदा जाने फिर कब मुलाकात होगी, इधर आओ तुमको गले से लगा से लेकर या मार्च एंड से लेकर तो जून जुलाई तक कभी कभी बाबा जुलाई तक भी कभी कभी बाबा पुणे में आकर गुरुप्रसाद में आकर रहते थे। और पहले तो सर्कुलर से वो सब लोगों को सूचना देते कि मेहर बाबा इस समय गुरुप्रसाद में आने वाले हैं, लेकिन किसी ने भी गुरुप्रसाद के आसपास में भी फटकना नहीं, किसी ने बाबा को देखने की कोशिश नहीं करना, रास्ते पर अगर बाबा दिखे तो मुंह फेर कर खड़े रह जाना, ऐसे बड़े कड़े इंस्ट्रक्शंस हुआ करते थे। और हम लोग पहले से हमको बचपने से ये शिक्षा दी गई थी कि बाबा को कभी नाराज़ नहीं करना, तो जब भी बाबा पुणे में आते थे हम लोग गुरुप्रसाद के पास कभी नहीं जाते थे, अगर उस तरफ से जाने का अगर मौका आया तो हम दूर के रास्ते से चले जाते थे, लेकिन गुरुप्रसाद के आसपास में नहीं कभी जाते थे। चार पाँच दिन के बाद में जब भी पहला शनिवार इतवार होता था तो तो बाबा के पास से बुलावा आता था फिर कि बाबा ने मिलने के लिए बुलाया है। तो हर जो बाबा प्रेमी जो निकट के बाबा समझते थे या बार बार जो जाने वाले बाबा के पास जाने कर बैठने वाले ऐसे जो प्रेमी थे उनको संदेशा, जो करीब की फैमिलीज थे बाबा की उनको बाबा से संदेशा मिल जाता था। अब हम लोग जब बाबा के सामने आते थे पहले तो बाबा जो छोटी रूम में बैठे रहते थे और हम लोग सब ग्रुप के ग्रुप बाबा के सामने प्रस्तुत होता था, पेश होता था। अब जैसे ही हम लोग जाते थे तो बाबा कहते थे कि तुम लोग जानते हो मैं कब से यहाँ पर आया हूँ? तो हाँ बाबा, अभी लगभग 8 दिन हो गए, फिर भी तुम में से किसी को ऐसा नहीं लगा कि हम लोग अपने प्रियतम को जाकर मिले। देखिए ये ईश्वर की उल्टी रीत, हमारे नाथ पंथियों में कहते हैं कि नाथाचा घरची उल्टी खून, ये उल्टा हिसाब बाबा का कि आप लोगों की किसी को ऐसा नहीं लगा कि बाबा को जाकर मिले। हम कहते थे बाबा आपके सर्कुलर में ऐसा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि किसी ने आपको देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुम तो प्रेमी हो ना, मेरे प्रेमी कहलाते हो ना, तो प्रेमी की क्या फर्ज होती है अपने प्रियतम को जाकर मिले, उसकी पूछताछ करे, उसकी तबीयत की पूछताछ करे, या आप लोगों में से किसी को नहीं ऐसे, फिर भी आप प्रेमी कहलाते हो मेरे, चलो निकल जाओ बाहर, सबको हका देते बाहर। अभी ये उल्टा हिस्सा, मतलब बाहर जाके खड़े रहते थे, फिर बाबा फिर से बुलाती थी, अच्छा माफ़, यानी जो गुनाह हमने कभी किया है ना उसको माफ़। अतः फिर हमको ब्लैंकेट परमिशन मिलती थी बिल्कुल कि जब भी आपको समय मिले तो यहाँ पर आप बैठ सकते हैं आकर। और फिर उसका हम बहुत 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 ही हम लोग ने उसका फ़ायदा उठाया। तो जब बाबा इतना इतना सुंदर, वो 2-3 महीने इतने सुंदर रहते थे, हर हफ्ते प्रोग्राम, हर 2-4 दिन के बाद में बाबा के पास जाने को मिलता था। हम लोग तो ऑफिस का समय से निकाल के समय निकाल कर गुरु प्रसाद में जाके बैठते थे, इतना तक हमारा होता था। रोज़ भी गए तो बाबा कभी रोक टोक नहीं करते थे, इतनी बाबा की परमिशन हुआ करती थी। तब जब बाबा फिर से लौट जाते थे गुरु प्रसाद में से मेहराजाद, तो वो 3-4 महीनों का समय था हमारा, बिल्कुल उठते बैठते सोते बाबा का ही ध्यान रहता था, बाबा का ही ख्याल रहता था। ऑफिस में बैठे तो हमको गुरु प्रसाद जाना है, या इस हफ्ते को गुरु प्रसाद में ये कार्यक्रम है हमको जाना है, ये हर वक्त हमारे मन में ख्याल आता था। मुझे याद है कुछ दिन के बाद हमारा ट्रांसफ़र हुआ था बम्बई में, मुझे नई नौकरी मिली थी और मधुसूदन का भी ट्रांसफ़र हुआ था, तो वहाँ से हम लोग जल्दी से काम निपट कर शनिवार को दिन जल्दी से दौड़ कर गाड़ी आकर पकड़ते थे, जितनी जल्दी की गाड़ी मिले तो उतनी। और जैसे ही हम स्टेशन पे उतरते, तब हम कड़के थे, हमारे पास जेब में ज़्यादा पैसा नहीं रहता था, हम दौड़ते दौड़ते वो गुरु प्रसाद की तरफ हम जाते थे, और गुरु प्रसाद में जितना भी समय मिले हमको बाबा के पास में बैठते थे। ऐसे ऐसे माहौल में से जब बाबा वापस चले जाते थे मेहराजाद, तब दिल पे बहुत बहुत गहरा ऐसा दुख होता था कि अभी अभी हमारे लिए क्या करने का, अभी बाबा चले जाने के बाद में ये जो दिमागी ख्याल होता था वो अभी बाबा निकल जाने के बाद में टाइम कैसे गुजारना हमारे लिए एक प्रश्न होगा। और इसी ख्याल में से जब बाबा बन गार्डन पे बैठते थे, लोगों को दर्शन देते थे, तो हम लोग सब बाबा के इर्द गिर्द बैठते थे, हम भजन पार्टी सामने बैठती थी, सारे लोग बाबा का दर्शन लेते थे वहाँ। और तब ये बाबा ये ख़ास तौर पर एक भजन गज़ल सुनते थे हर बार। 1967 में आखिरी बार जब बाबा ने गज़ल सुनी और बाबा वहाँ से मेहराजाद की तरफ चल पड़े, ये गज़ल सुनाने के बाद में हम लोगों को खुद को पता नहीं था कि आगे चलकर इसके बाद बाबा का ये आखिरी दर्शन है, बाबा को मिलने का समय नहीं होगा, नहीं मिलेगा, और बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। जैसे कि मैंने कल कहा था कि हमारे सबके जीवन में एक बड़ा ही वैक्यूम पैदा हुआ था, बहुत ही रंज के दिन थे वो, बिल्कुल हम सह नहीं पा रहे थे, हम सोचने की भी क्षमता नहीं रही थी हमारे इसमें, हमारे जिसमें जिगर में सोचने की क्षमता नहीं रही, तो सहन करने की बात ही अलग है।
जुदाई के लम्हे करीब आ रहे हैं, सितारों के दिल डूबते जा रहे हैं। जुदाई के लम्हे करीब आ रहे हैं, सितारों के दिल डूबते जा रहे हैं। इधर आओ तुमको गले से लगा लूं, इधर आओ तुमको गले से लगा लूं, खुदा जाने फिर कब मुलाकात होगी। इधर आओ तुमको गले से लगा लूं, खुदा जाने फिर कब मुलाकात होगी। मोहब्बत में होशो खिरद क्यों गवाए, किसी के लिए क्यों जवानी लुटाए।
होशो खिरद हमारा होश, हमारी बुद्धि, हमारी अकल क्यों गवाना है उनके पीछे। ऐसा समय आता है कोई प्रेमी के जीवन में कि उसको इतना डेस्परेटनेस आ जाता है उसके जीवन में, तो बोलता है मैंने अपनी ज़िंदगी फालतू गवाई इनके पीछे। मोहब्बत में होशो खिरद की गुमाए, किसी के लिए क्यों जवानी लुटाए। मेरे जीवन मेरी जवानी में किसके लिए क्यों लुटाऊं मैं, अभी शायर कहता है, वो डेस्परेटनेस में कहता है।
मोहब्बत में होशो खिरद क्यों गवाए, मोहब्बत में होशो खिरद क्यों गवाए, किसी के लिए क्यों जवानी लुटाए।
लेकिन ये कभी होता है जब सारी जवानी लुट जाती तब ये होश आता है कि मैंने अपनी जवानी पूरी गवाई। किसी ने कहा है, प्रीत के ये दुख होवे ये जाने सब कोई, प्रीत की ये दुख होवे ये जाने सब कोई, नेहा लगा के पछताना क्या। अरे जब मालूम है प्रीत का ये दुख ही दुख, प्रीत करने से दुख ही दुख हमारे जीवन में आता है, तो अभी प्रेम लगा के लगा तो चुके हैं, अभी क्या पछताना क्या। प्रीत की ये दुख हुए जाने सब कोई, नेहा लगा के पछताना क्या। घर का दीपक आग लगाता, घर का दीपक आग लगाता, मीठा बादल दर्द बढ़ाता। जब बादल कभी कभी ऐसे होता है कि जब बादल छा जाते हैं तो हमारे कोई किसी की याद आ जाती, हमको हमारा दिल का दर्द बढ़ते जाता है। घर का दीपक आग लगाता, मीठा बादल दर्द बढ़ाता, बिजली से डर जाना क्या, नेहा लगा के पछताना क्या। चुप रह कर मजबूर रहे जो, चुप रह कर मजबूर रहे जो, पास में आकर दूर रहे जो, ऐसों को दर्द सुनाना क्या, नेहा लगा के पछताना क्या।
मोहब्बत में होशो खिरद क्यों गवाए, किसी के लिए क्यों जवानी लुटाए। अगर जाफरी हमको मालूम अगर जाफरी हमको मालूम होता कि इस खेल में मात ही मात होगी। अगर जाफरी हमको मालूम होता कि इस खेल में मात ही मात होगी। मगर जाफरी हमको मालूम होता है।
बुते बेवफा से मैं क्या मिलूं, किसी ने कहा बुते बेवफा से मैं क्या मिलूं। बेवफा अपने प्रियतम को बेवफा कहता है वो। बुत यानी पुतला, बुत यानी पुतला स्टैचू। बुते बेवफा से मैं क्या मिलूं, मेरा दूर ही से सलाम है। कई साल महा गुजर चुके, ना सलाम है ना पयाम है। कोई संदेशा नहीं उनसे, अनेक साल गुजर गए हैं, उनसे कोई संदेशा नहीं मिल रहा मुझे। अब मैं क्या मिलूं उनसे। मीरा क्या कहती है, मीरा, मीरा ने भी ये प्रेम का दर्द बहुत सहन किया है। आप लोग सब जानते हैं मीरा की कहानी। वो कहती है इतना जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती के प्रीत करे ना कोई। जो मैं इतना जानती कि प्रीत करे दुख होय, नगर ढिंडोरा पीटती के प्रीत करे ना कोई। कभी प्रीत, कभी प्रेम के रास्ते को न जाइए, और जाना है तो सोच समझ के जाइए, क्योंकि यहाँ बर्बादी ही बर्बादी है। अपने आप को मिटाना है, बर्बादियाँ ने अपने आप को मिटाना है। मोहब्बत में होशो खिरद क्यों गवाए, किसी के लिए क्यों जवानी लुटाए। अगर जाफरी हमको मालूम होता, अगर जाफरी हमको मालूम होता कि इस खेल में मात ही मात होगी। अगर जाफरी हमको मालूम होता कि इस खेल में मात ही मात होगी। अगर जाफरी हमको इधर आओ तुमको गले से लगा लो, खुदा जाने फिर कब मुलाकात होगी। इधर आओ तुमको